जयतां स्फूर्तो पंगो मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदां भोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्यत वृंदारण्य कल्प दुर्मादः श्रीमद रत्नाकार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशी वटा तटास्थिता कर्षण वेणु सुनैर गोपिर गोपीनाथ श्रेष्ठना श्री राधा सह श्री मदनमोहन श्री राधा सह श्री गोविंद चरण श्री राधा सह श्री श्री गोपीनाथ ऐ तीन ठाकुर होए गोड़ियार नाथ ऐ तीन ठाकुर गोड़िया के करिया छह नाथ मुसाद ऐ तीनेर चरण बंदो तीने मोरानंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम 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 हरे।
इसको पीछे ले जाओ पीछे ले जाओ इसको हरे कृष्णा। सो आप सबका इस साप्ताहिक प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। मेरा थोड़ा गला खराब है सो हम थोड़ा सा प्रवचन करेंगे और ज़्यादा टाइम हम बिताएंगे भगवान का कीर्तन करने के लिए। आज से कार्तिक मास शुरू हुआ है और कार्तिक मास, आप सबको कार्तिक मास के बारे में पता है? कितने लोगों को पता है कार्तिक मास के बारे में? अच्छा। सो जो 12 महीने हैं इसमें भगवान को सबसे अधिक प्रिय कार्तिक मास है और कार्तिक मास की जो महिमा है ये पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसकी महिमा बताई गई है कार्तिक मास की। तो आज से शुरू हुआ है और 14 नवंबर तक रहेगा, है ना, कार्तिक मास। सो ऐसा बताया जाता है कि कार्तिक मास में जो भी पाप किया या जो पुण्य किया, वो जैसे पर्वत है, नदी है, समुद्र है, हमेशा रहते हैं, वो हमेशा उनका प्रभाव बना रहता है। जैसे गंगा नदी है, बह जा रही है, नहीं तो कार्तिक मास में अगर कुछ पाप किया या पुण्य किया तो उसका असर हमेशा बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ के हमें कार्तिक मास में व्यवहार करना चाहिए, रहना चाहिए कार्तिक मास में। चतुर्मास का आखिरी महीना है कार्तिक, और चतुर्मास शुरू होता है जब शयन एकादशी होती है, जब भगवान को विश्राम कराते हैं, ना। सो 4 महीने भगवान विश्राम करते हैं, वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं। और कार्तिक मास में आखिर में आएगी प्रबोधिनी एकादशी आती है, तो उसमें भगवान को जगाया जाता है, है ना। सो और एकादशी के 3-4 दिन बाद पूर्णिमा आती है, तो जो कार्तिक मास संपन्न हो जाएगा। सो हम कार्तिक मास में जो भी पुण्य करेंगे वो अक्षुण है, उसमें क्षय नहीं होगा कभी भी। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया या कम हो गया। वैसे तो भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रम नाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान कह रहे हैं कि देखो नष्ट नहीं होती मेरी भक्ति, प्रत्यवायो न विद्यते। और ऐसा नहीं है कि चलो नष्ट नहीं होती, कम होती होगी, कम भी नहीं होती, था, लेकिन जो कार्तिक मास है उसका और भी अधिक महत्व है। आप पूरे 12 महीने जो करेंगे उसको 1 करोड़ से गुना कर दो, और जो कार्तिक मास में किया तो भी कोई तुलना नहीं है उसकी, है ना। कार्तिक मास में अगर हमने आपको नीचे बैठने में दिक्कत है तो पीछे आराम से बैठ जाओ, नीचे बैठने में दिक्कत तो नहीं है, वहां पीछे सीढ़ी बनी हुई है वहां बैठ जाओ। कार्तिक मास में अगर आपने भगवान की परिक्रमा लगाई, यहां पर भी सुविधा है भगवान की परिक्रमा लगाने के लिए, पीछे से है रास्ता, पीछे से रास्ता। एक एक कदम परिक्रमा का, एक एक कदम एक एक अश्वमेध यज्ञ के समान, मतलब सोचा नहीं जा सकता। किसी को कोई अश्रद्धालु है उसको बोलेंगे जाकर तो बोले क्या बात कर रहे हो, नहीं ऐसा थोड़े ना होता। लेकिन ये शास्त्र वचन है, और शास्त्र वचन में श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रद्धा वो दवाई है, श्रद्धा वो शक्ति है जो आपकी भक्ति को फलीभूत करेगी। अगर आपने भक्ति की लेकिन श्रद्धा नहीं है तो फायदा नहीं होगा। आप बोलो कैसे फायदा नहीं होगा, भगवान का नाम एक बार लिया बात खत्म। हाँ, लेकिन शास्त्रों में हमारे कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, बहु कोटि जदि करे श्रवण कीर्तन तभी तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर करोड़ों जन्म अगर हम भगवान की भक्ति करते रहे जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बोलते रहे 24 घंटे बोलते रहे, करोड़ों जन्म करते रहे, भगवान के चरण कमल का आश्रय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, नाम अपराध कर रहे हैं। तो अगर श्रद्धा है तो फल है, श्रद्धा नहीं है फल नहीं है। जो फल है, फल निर्धारित होता है संकल्प से। आप किस संकल्प से आप कोई कार्य कर रहे हैं उससे उसका परिणाम निर्धारित होगा। अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, अगर हम अच्छे, कोई छोटी बच्ची जप कर रही है कि अच्छा पति मिले, या लड़का भगवान का नाम जप कर रहा है कि उसे अच्छी पत्नी मिले, तो वो मिलेगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। जिस संकल्प से, जो सोच के हम कार्य करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, वो मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, और कल्पतरु कल्प वृक्ष के समान है। आप अगर कल्प वृक्ष से संपन्नता मांगोगे भगवान देंगे, अगर आप कल्प वृक्ष से भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों का अनुराग मांगोगे तो भगवान भगवान के अपने चरणों की अनुराग प्रदान करेंगे। तो हम कितनी श्रद्धा से हम काम कर रहे हैं, कितनी श्रद्धा से हम भक्ति कर रहे हैं, हमारा कितना विश्वास है। श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, श्रद्धा शब्द की परिभाषा चैतन्य चरितामृत में दी गई है, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय। बहुत ही हमें विश्वास होना चाहिए, हमारे मन में कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि क्या शंका नहीं होनी चाहिए, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। पूरा विश्वास होना चाहिए भगवान की भक्ति करने से हमें सारी सिद्धियों की, सारी सफलताएं, सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, कुछ अलग से हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई बोले कि मुझे पूरा विश्वास है तो श्रद्धा है, अगर पूरा विश्वास नहीं है तो श्रद्धा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि कम है। तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत महान आचार्य हुए हैं हमारी परंपरा में, वो कहते हैं देखो एक स्त्री गर्भवती है या गर्भवती नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि थोड़ी गर्भवती है, कह सकते हैं क्या? इसी प्रकार श्रद्धा है तो है, नहीं है तो नहीं है, ना? सो श्रद्धा का मतलब है पूरा विश्वास। तो जब शास्त्रों का वचन, शास्त्रों में अगर कहा गया है कि स्पेशली कार्तिक के अंदर अगर हम भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, अभी प्रवचन के बाद में कीर्तन होगा, उसके बाद आप भगवान की परिक्रमा लगाइएगा। सो एक एक कदम, एक एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के समान है। अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल है वो अक्षुण फल है, करोड़ों जन्मों तक, करोड़ों वर्षों तक, पता नहीं कितना अवधि तक इंद्र के साथ बैठ के आप उसके साथ नंदन कानन में बैठ के रोटी खाते रहे, इतना फल है। और ये फल सिर्फ भगवान की परिक्रमा लगाने के लिए एक कदम उठाया तो मिल गया, ये कार्तिक का महत्व है, कार्तिक का इतना बड़ा महत्व है। और बताते हैं कि अगर तीन दिन कार्तिक में, सिर्फ तीन दिन अगर आपने भगवान की आरती कर ली, भगवान का भजन कर लिया, तो देवी देवता आपकी पूजा करने के लिए आ जाएंगे। तो आप में से कई भक्त हैं वो बोलेंगे हमने तो पिछले साल भी की थी, कोई नहीं आया। नहीं कह सकते हैं, नहीं, हमें दिख नहीं रहे, हमें दिख नहीं रहे। जैसे इस समय यहाँ पर ये पूरा हाल जो है, पूरा यहाँ पर सभी देवी देवता सभी विराजमान है, जहाँ पर कृष्ण कथा होती है वहाँ पर सारे देवी देवता तुरंत सारे काम छोड़कर पहुँच जाते हैं, ब्रह्मा इंद्र यमराज। अभी यमराज यहाँ बैठे हैं, आपको डर लग रहा है? आपको डर नहीं लग रहा? हाँ, क्योंकि यमराज जी भी आप ही की तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं। हाँ, वो भी भक्त हैं, आप भी भक्त हो, एक भक्त को दूसरे भक्त से डरने का क्या पॉइंट है, नहीं? हनुमान जी, हाँ, जितने देवी देवता हैं सब यहाँ पर विराजमान है, हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारे पास अभी वो दृष्टि नहीं है। प्रभुपाद के पास थी वो दृष्टि, प्रभुपाद सिद्ध पुरुष है, सिद्ध व्यक्ति हैं, भगवान कृष्ण के सेनापति हैं, सीधा वैकुंठ जगत से आए थे हमारा कल्याण करने के लिए, तो प्रभुपाद देख सकते थे। और ऐसा भी हुआ कि जब आप लोग प्लीज ये शोर बाहर से आते, ऐसा भी हुआ कि प्रभुपाद जब इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे तो प्रभुपाद अकेले बैठे होते थे और पूरा हॉल खाली होता था, अकेले लेक्चर देते थे। आप जो भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आप 33 पेजेस का इंट्रोडक्शन है, वो प्रभुपाद ने अकेले बैठ के दिया था, कोई नहीं था, हमें दिख रहा था कोई नहीं था, प्रभुपाद को सब दिख रहे थे। प्रभुपाद कहते थे पूरा हॉल भरा हुआ है, आप लोग अभी देख नहीं पा रहे हो, भक्ति करेंगे तो देखने की क्षमता भी मिलेगी। सो सिर्फ 3 दिन अगर हमने भगवान की भक्ति की कार्तिक मास में आपने किया, तो देवी आपना आपका यश बढ़ जाएगा कि देवी देवता आपकी उपासना करेंगे, इंद्र ढूंढेंगे आपको कि भैया इनसे 5 मिनट का समय मिल जाए, इंद्र तक आपको ढूंढेंगे, इतनी महानता है। अगर पूरे 30 दिन किया, पूरा महीना अगर किया, तो पद्म पुराण में कहते हैं कि आपके खानदान में आज तक जितने पैदा हो चुके हो शुरू से लेके आज तक और आगे जितने पैदा होंगे सबका कल्याण, सबको मुक्ति मिल जाएगी। जितने पैदा हुए और जितने होने वाले सभी का, सभी मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे सभी लोग। अगर भगवान को भोग लगा दिया, भगवान को अगर आपने कार्तिक के महीने में भोग लगा दिया अगर आपने, तो आपको सारूप्य मुक्ति मिल जाएगी। मतलब जैसे भगवान चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा, सो आप सब भी चतुर्भुज रूप प्राप्त हो जाएंगे ये शरीर छोड़ने पर, सिर्फ भगवान को भोग लगाने से। दीपदान भगवान को किया, अभी हम दीपदान करेंगे, आप सब मिलकर हम सब भगवान को दीपदान करेंगे, हम आपको विधि भी बताएंगे दीपदान करने की। अगर दीपदान किया भगवान को, तो उसका जो फल है वो अश्वमेध यज्ञ को 1 करोड़ से गुना कर लो, बेकार है वो अश्वमेध यज्ञ का फल। सिर्फ भगवान को दीपदान करना, उससे करोड़ों गुना ज्यादा कल्याणकारी है, करोड़ों गुना ज्यादा कल्याणकारी। मान लिया आपके पास दीपक नहीं है, 1 दीपक जल रहा था, जलते जलते बुझ गया, आपने जला दिया उसको, वही फल मिलेगा। दीपक नहीं है, नहीं है पैसे, 1 रुपया नहीं खर्च सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुझा हुआ दीपक जला दो वही फल मिल जाएगा, वही का वही फल। आपने जितने पाप किए आज तक, दीपदान करने का फल बता रहा हूं, जितने पाप किए, और पद्म पुराण में लिखा है कि वो चाहे पाप मेरु पर्वत मंदर पर्वत से भी ज्यादा क्यों नहीं हो, एक क्षण में जैसे रूई का गोला एक क्षण में जल के राख हो जाता है, नहीं टाइम लगता है क्या, एक क्षण में राख हो जाता। भगवान को दीपदान किया सब खत्म। मेरे पास और इतनी बड़ी लिस्ट है आपको बताने के लिए, कार्तिक मास की महिमा अनंत महिमा है, अनंत। हम सोच भी नहीं सकते कि कितना फायदा होगा, इसीलिए तुलसी की महिमा कार्तिक में विशेष महत्व है, तुलसी महारानी की सेवा के लिए विशेष महत्व है। कभी यमराज का मुख नहीं देखना पड़ेगा, अगर दीप दान किया, भगवान को भोग लगाया, तुलसी महारानी की सेवा की, वो तुलसी बनाने की सेवा में कोई हल थोड़ा ना चलाना है, क्या करना है, एक कटोरी जल डालना है, बात खत्म हो गई। जो दिया भगवान को दिखाओगे तुलसी महारानी को दिखा देना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। नहीं, इससे क्या सिद्ध होता है, इससे दो बातें सिद्ध होती हैं। इससे पहली बात यह सिद्ध होती है कि भगवान कितने चिंतित हैं कि हम लोग किसी तरह से घर आ जाए। नहीं नहीं तो दीप दिखाना कौन सी बड़ी बात है, मतलब हाँ क्या आफत आ जाएगी दीप दिखाने में, कौन से हाथ पैर दुखने शुरू होने, हाँ कुछ मेहनत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी सेवा कर दी। और पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान को समझ नहीं आता, अगर आपने दीपदान कर दिया भगवान को समझ नहीं आता कैसे इसका ऋण उतारूंगा अब मैं। क्या करूं कि ये दीपदान करने का ऋण उतर जाएगा, भगवान को समझ नहीं आता। तो क्यों भगवान ने ये बहुत ही सरल उपायों में इतनी शक्ति डाली है भगवान ने, क्यों? क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु हैं, भगवान बहुत चिंतित हैं कि बहुत टाइम हो गया गए हुए, अब वापस आ जाना चाहिए। नहीं, बच्चा है भूखा प्यासा, बहुत देर हो गई धूप में खेल रहा है, हाँ तकलीफ भी सह रहा है, अभी इसको वापस जल्दी से जल्दी लेके आना चाहिए। एक बार आए थे द्वापर युग में, मन नहीं माना, वापस कलयुग में आ गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वापस आ गए। लोगों ने वैल्यू नहीं लगाई उनकी, हाँ लोग कह रहे थे पता नहीं क्या कर रहे हैं ये, आंसू बहाते रहते हैं। हाँ कभी कभी चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ जाते थे तो भगवान कृष्ण को उल्टा सीधा बोलते थे गोपी भाव में, तो लोग समझ नहीं पाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात, जो मेरे भाव है लोग समझ नहीं पा रहे, तो क्या करूं? घर छोड़ दिया चैतन्य महाप्रभु, संन्यास ले लिया तुरंत। उस टाइम में कुछ भी हो जाए सन्यासी का अपमान नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो सन्यासी पूजनीय होता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये लोग मेरी अवहेलना कर रहे हैं, इनको अवहेलना के पाप से बचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने सुख की परवाह नहीं की, तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़ दिया, सन्यास ले लिया। इतने दयालु भगवान है, इससे ये सिद्ध होता है। पूरी पूरी शक्ति डाल दी भगवान ने अपने दिव्य नामों में, पूरी शक्ति डाल दी। भगवान का नाम और भगवान में कुछ भेद नहीं है, ये बात सही भी है और गलत भी है। भगवान में और भगवान के नाम में भेद नहीं है तो इसका मतलब भगवान और भगवान का नाम समान रूप से शक्तिशाली है, नहीं, भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम भगवान से ज्यादा दयालु है, कभी किसी को मना नहीं करता लेने के लिए। भगवान की आरती करेंगे नियम है, लेकिन भगवान ने कहा मैं ठोकर मारता हूं नियमों, आप बिस्तर में लेट कर मेरा नाम लेना चाहते हो ले लो, शौच करते हुए मेरा नाम लेना चाहते हो ले लो, ब्रश नहीं किया मेरा नाम लेना चाहते हो ले लो, कुछ नियम नहीं है। सुबह जप नहीं कर पाया, रात को 12 बजे जप करना चाहता हूं कर लो, कोई काल नहीं है। अभी दीपदान करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप नहाए हुए हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, शुचि हो, जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मंत्र बहुत सारे आने चाहिए भगवान का नाम लेने के लिए, जरूरी नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है। सिर्फ एक ही बात जरूरी है, क्या कि किसी ना किसी तरह से हम भगवान के शरणागत हों और भगवान के दिव्य नामों का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब भगवान कुछ नियम नहीं लगा रहे तो हम आपको कैसे कह सकते हैं कि कुछ नियम है। तो ये सिद्धांत पहला है कि हमने बोला था दो बातें इसमें हैं। तो पहली बात क्या है कि कुछ भी कर रहे हो, शुचि हो अशुचि हो, कैसा भी आपका भेष है, कोई भी दिन का 24 घंटे में कोई भी समय है, लेटे उठे बैठते दौड़ते सोते कुछ भी करते हुए भगवान का नाम ले लो, बात खत्म, है ना। तो ये पहला सिद्धांत है कि भगवान इतने दयालु हो गए, सारे नियम कानून हटा दिए कि ठीक है यार नहीं कर सकते, कुछ नियम का पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप सिर्फ नाम लो किसी ना किसी तरह से। 24 घंटे नहीं ले सकते, एक बार ले लो बहुत है, नहीं दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि भगवान इतने दयालु हैं, नियम पालन नहीं किया तो भी इतना फल देने के लिए तैयार है, अगर नियम पालन कर लिए तो भगवान क्या करेंगे? नहीं, अगर बिना नियम पालन किए भगवान अपना सर्वस्व सौंपने के लिए तैयार है, अगर नियम पालन कर लिए तो कुछ अचिंत्य है, सोचा ही नहीं जा सकता कि भगवान हमारे लिए क्या कर देंगे। भगवान के भक्तों में भी पूजनीय बन जाओगे आपको, मलेच्छ भी अगर भगवान का नाम ले रहा है तो पूजनीय बन जाता है। अगर ब्राह्मण है भगवान का नाम नहीं ले रहा तो उसको त्याग सकते हैं, तिरस्कार के योग्य है वो व्यक्ति। कुल का विचार नहीं है, अगर हम भगवान को शुरू में चलो नियम पालन नहीं किए लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में जुड़े, भक्ति में थोड़े स्थिरता लेके आए, गंभीरता आए, तो नियमों का पालन अगर हम करेंगे। अगर आप कार्तिक मास में सिर्फ एक दिन सुबह 4 बजे उठ के नहा लिए, सिर्फ एक दिन, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा, सिर्फ एक दिन, 30 दिन को छोड़ दो, सिर्फ एक दिन सुबह 4 बजे उठ के नहा लो। आप बोलो आप सुबह 4 बजे कैसे उठेंगे, अरे एक दिन जल्दी सो जाओ, कौन सी आफत आ रही है, एक सीरियल मत देखना, नहीं एक दिन जल्दी सो जाना, आज आप घर जाओगे जल्दी सो जाना 9:30 बजे, सुबह 4 बजे उठ जाना, हाँ नहा के भगवान की आरती करके फिर सो जाना तो भी फल मिलेगा। नहीं तो भी फल मिलेगा। इतने दयालु है भगवान। और कुछ कह रहे हो? हाँ, आरती करो, सो जाओ। आरती तो करो, आरती करो, सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आरती करो। आरती करना महत्वपूर्ण है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा नियम पालन करेंगे भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो आप कहोगे कि अभी कह रहे थे नियम नहीं है, अभी आप कह रहे हो नियमों का पालन करो। नहीं तो दोनों बात कट रही है आपस में। कभी कहते हो नियम का पालन करो, कभी कहते हो नहीं करो, ये क्या चक्कर है? क्या आपको किसी ने बताया कि सुबह उठ के ब्रश करना नियम है? आप इसे कितने लोग सुबह ब्रश करते हो उठ के? आप नहीं करते ब्रश? कितने लोग ब्रश करते हैं सुबह उठ के? तो वो नियम लगता है, करना ही है ब्रश। नहीं, करना ही है ब्रश, मतलब उसमें क्या बात है? तो अगर आप भगवान को संतुष्ट करने के लिए नियमों का पालन करोगे, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे, आप चार नियमों का पालन करोगे। चार नियम कौन से हैं? मांस नहीं खाना। लेकिन मांस नहीं खाने से भी ज्यादा मुश्किल क्या है? प्याज नहीं खाना। मांस छूट जाता है, प्याज नहीं छूटता है ना। नहीं, शराब नहीं पीना। लेकिन शराब छोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है चाय को छोड़ना। कई लोग तो कंठी इसलिए नहीं डालते कि चाय नहीं छूट रही, बताओ। यमराज का सामना करने के लिए तैयार है, चाय नहीं छोड़ रहे। और पहले कहते थे कि दूध खराब करना है तो चाय डाल दो उसमें। पहले चाय कौन पीता था? ये तो फ्री में बांटी है चाय अंग्रेजों ने पिलाने के लिए, लत लग जाए। सो शराब चाय इत्यादि नहीं पियो, मांसाहार प्याज लहसुन नहीं खाओ, जुआ नहीं खेलो। हाँ, जुआ नहीं खेलो और व्यभिचार नहीं करो, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं, है ना। अगर ये चार नियमों का पालन करोगे, 16 माला का जप करोगे, तो शुरू में लगेगा कि नियम है, लेकिन जब अभ्यास हो जाएगा तो फिर नियम नहीं लगेगा। फिर लगता है कि करना ही है, मतलब। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया कि नियम नहीं है, क्योंकि शास्त्र चाहते हैं कि आप लोग ऊपर उठ जाओ, है ना। जो बच्चा रोते हुए स्कूल जाता है वो अच्छा है, जो हंसते खेलते स्कूल जाता है वो अच्छा है। तो जो नियम, जिसको वो नियम लग ही नहीं रहे, करना ही है भगवान की सेवा के लिए, वो भगवान को स्वाभाविक रूप से ज्यादा प्रिय होगा भगवान। अगर आप नियम पालन नहीं करोगे तो भी भगवान आपको स्वीकार करेंगे। मतलब अगर आप चाय पीते हो और भगवान का नाम ले रहे हो तो भी भगवान आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन चाय मजबूरी में छोड़ी, बहुत तलब लग रही है चाय पीने की, फिर भी नहीं पी के भगवान का नाम ले रहे हो, तो आप भगवान के और भी ज्यादा प्रिय हो जाओ। लेकिन चाय की तलब भी छूट गई, आप बोलो चाय क्या बकवास चीज है, और फिर भगवान का नाम ले रहे हो, तो भगवान आपको अपना अंतरंग सखा मान लेंगे। आप खुद बाद में खाएंगे, पहले आपको खिलाएंगे। आपके साथ कुश्ती लड़ेंगे और आपसे हार जाएंगे। कौन भगवान को हरा सकता है जिसने एक छोटी सी उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा लिया, 7 दिन तक उठा के रखा और सबके कहने पर नीचे रखा। ऐसा नहीं है कि थक गए थे चलो नीचे रख देते हैं। ऐसे व्यक्ति से कौन लड़ सकता है? लेकिन लड़ते हैं जो भगवान के सखा हैं, भगवान से लड़ते हैं और भगवान को हरा देते हैं। तो फिर भगवान क्या सजा भुगतते हैं उसकी? भगवान को अपने कंधे पे उठा के भगवान घोड़ी बन जाते हैं, कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, चलो यहां से वहां तक लेके जाओ सजा के रूप में। उसके अंदर जो सुख है दुनिया की किसी तपस्या में, दुनिया के किसी त्याग में, ब्रह्म ज्योति में विलीन होने में किसी में भी नहीं है, है ना? तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब बहुत उत्साह से आप लोग एक कार्तिक मास में भगवान की, आप सब भक्त हो और आप भगवान की भक्ति कर ही रहे हो, लेकिन और ज्यादा उत्साह से आप कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करो। रोज आप भगवान को दीपदान करो। आज तो हमारे सतपाल प्रभु ने आपके लिए दीपदान की व्यवस्था की हुई है, हाँ, लेकिन आप लोग बाकी के दिन और हर रविवार आपको यहाँ पर दीपदान करने की सुविधा मिलेगी, लेकिन आप बाकी के दिन आप दीपदान के लिए स्वयं सामान लाओ और भगवान को दीपदान करो। तो क्या दीपदान करने के लिए मंदिर आना जरूरी है? तो पद्म पुराण में लिखा है कि आप घर में भी रह के करोगे वही फल मिलेगा। और क्या मतलब, क्या करें भगवान? अब तो सिर्फ यही रह गया कि आपका हाथ पकड़ के घुमाना शुरू कर दें, यही रह गया। और क्या मतलब सुविधा देना चाहिए कि कर लेंगे आप, नहीं? तो आप सब दिवाली का प्रतीक्षा मत करो। हाँ, आप सब जो है आज तो दीपदान आपको मिल जाएगा, कल आप जाओ बाजार में और ढेर सारे दीपक लेके आओ और उसकी बाती लेके आओ और देसी घी में और साथ में कपूर ऊपर लगा के आप भगवान की आरती करो। हम सब आपको, जो कार्तिक मास है इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। और दामोदर मास क्यों कहा जाता है, क्या उसका, उसके पीछे क्या घटना है, वो हम आपको अगले रविवार आपको बताएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं और ये दामोदर अष्टकम यहाँ पर हमने लगाया हुआ है। दामोदर अष्टकम मतलब भगवान दामोदर के की प्रशंसा में 8 श्लोक बोले गए हैं। तो कार्तिक मास में हम आप सब लोगों को एक एक ये जो प्रार्थना है दामोदर अष्टकम, हम आपके लिए एक एक कॉपी बना के लाए हैं, तो आप इसको बहुत संभाल के रखिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से लेके गए और फाड़ के फेंक दिया क्योंकि फ्री में था। हाँ, इसको रोज, और हम आप सबको एक भगवान दामोदर की एक एक फोटो भी देंगे हम आपको, आप अपने घर में उसको रखिए और रोज उसको दीपदान कीजिए कार्तिक महीने में। और ऐसा नहीं है सिर्फ कार्तिक महीने में कि ना, आप पूरा साल कर सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। कोई रोकेगा मुझसे बात करवा के, ठीक है? हरे कृष्ण। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जो नहीं जला सकते हो और हाँ, आप पूरा साल जलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है,
आप नए दीपक लेके आओ तो भगवान को लगेगा आपने उनके लिए कुछ किया सामने से, है ना। आप ये सोचो कि मैं भगवान के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ये मत सोचो कि इतने से चल जाएगा काम, क्या वो भी चलेगा, उसमें बुराई नहीं है। लेकिन आप सामने से आप जाओगे, बाजार जाओगे, थोड़ा तकलीफ झेलोगे तो भगवान को और अच्छा लगेगा। अभी क्या होता है देखो, हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम खाना बना के, लेकिन मन में क्या भाव रहता है आखिर में, हमने खाना है। कितने लोग सोचते हैं कि भगवान को अच्छा लगेगा, चलो आज भगवान को ये खिलाते हैं, जो हमें अच्छा लग रहा है वही तो बना रहे हैं। हकीकत जो है, वैसे कुछ भी बोल सकते हो, जो हकीकत है मेरे समेत, ठीक है ना। आज शाही पनीर खाने का मन कर रहा है, चलो भगवान को भी खिला दो, मन हमारा ही था। आज वो चने छोले खाने का मन कर रहा है, चलो छोले बना दिए। सो हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन पीछे भाव क्या रहता है कि भैया आखिर में हमारे पास ही आएगा, नहीं। लेकिन जब आप भगवान को दीपदान करोगे तो आपके पास थोड़े ना आएगा। दीपदान भगवान की आरती जो है वो ऐसा कार्य है कि वो भगवान के ही निमित्त है, नहीं। तो अगर आप दीपक लेने जा रहे हो बाजार में तो वो विशेष रूप से भगवान के लिए लेने जा रहे हो, उसमें आपका स्वार्थ नहीं आएगा, क्योंकि आप दीपक थोड़े ना खा जाओगे, नहीं। सो ये कुछ ऐसे काम है जिसमें आपके भोग की इच्छा नहीं आएगी। तो ये काम आप कह सकते हो कि हमने तो निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए किया। तो जाओ बाजार, जाके दीपक लेके आओ, स्पेशली जाओ और भगवान के लिए बाती लेके आओ, घी लेके आओ, कपूर लेके आओ और भगवान की आरती करो। उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो आपने उसमें से कुछ लेना नहीं है, है ना। तो आप नहीं जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जाओगे तो भगवान को और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न? ये प्रश्न इनका है कि वैसे तो कहते हैं भगवान कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण गौर वर्ण के भी हैं, जैसे पंजाबी भाग में है श्री राधिका रमन, हाँ वो गौर वर्ण के हैं। तो क्या कैसे इसको समझ सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? पूरा गौड़िया संप्रदाय इस सिद्धांत पर टिका हुआ है। ये जो प्रश्न है आपका, पूरा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय इस पर आधारित है ना। तो मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये प्रश्न पूछा है। भगवान का जो वर्ण है वो श्याम है, लेकिन जब भगवान श्रीमती राधा रानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, खो जाते हैं श्रीमती राधा रानी के ध्यान में, तो इतने भगवान भावावेश में आ जाते हैं कि श्रीमती राधा रानी का भाव अंगीकार कर लेते हैं और श्याम वर्ण से गौर वर्ण हो जाते हैं। और वही गॉड वर्ड वही भाव प्रदर्शित करने के लिए दूसरे भक्तों में बांटने के लिए भगवान वैकुंठ में गोलोक में रह नहीं पाते और उस भाव को दूसरे भक्तों को बांटने के लिए भगवान अवतरित होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु की सो भगवान कृष्ण जब गॉड वर्ण में है तो इसका मतलब है कि वो श्रीमती राधा रानी के भाव में, और हम उन भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं जो श्रीमती राधा रानी के भाव में पूरी तरह से रमे हुए हैं। इसीलिए हमारे आराध्य चैतन्य महाप्रभु, और इसीलिए पूरा गौड़िया वैष्णव संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है जो श्रीमती राधा रानी के भाव में। ठीक है, आप लोग को हो सकता है ये बात समझ में नहीं आए, फर्क नहीं पड़ता, आपके कान में चली गई, आपके हृदय में उतर गई ये बात, आपका शुद्धिकरण होगा। अगर समझ में नहीं आए तो परवाह नहीं है। वो जन्म लेने जब जन्म लेगा तो ही तो आपके खानदान का हिस्सा माना जाएगा। जब कहा गया है कि मुक्ति हो जाएगी तो मुक्ति मिलेगी प्रारब्ध होने के बाद, जब तक एक शरीर नहीं धारण किया। इनका प्रश्न है कि अगर हमने भगवान कार्तिक मास अच्छे से पालन किया तो पद्म पुराण में लिखा है जितने आ चुके हमारे खानदान में वो जितने आएंगे सबका सबको मुक्ति प्राप्त होगी, तो जो आने वाले हैं उनको मुक्ति प्राप्त होनी ही है, तो आने की जरूरत क्या है, पहले से क्यों नहीं मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो पहले प्रारब्ध होगा, अभी तो अप्रारब्ध है, पहले प्रारब्ध होगा, पहले शरीर मिलेगा, आपके खानदान का हिस्सा बनेंगे, और फिर आपके पुण्यों के अनुसार जो आपने जो ये कार्तिक मास में भगवान की भक्ति की उसका फल वो चखेंगे। वो फल चखने से जो उनके सारे आगे के प्रारब्ध सब नष्ट हो जाएंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और पद्म पुराण में लिखा है कि जो पितर हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमारे परिवार में एक कृष्ण भक्त पैदा होगा जो कार्तिक मास में दीपदान करेगा, हमारा कल्याण होगा। सो अगर आप अपने परिवार से अपने पूर्वजों से बहुत प्यार करते हैं तो कृष्ण भक्ति करो। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। आप कृष्ण भक्ति करेंगे सारे कर्म जितने भी, अलग से श्राद्ध करने का, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सर्व कर्म कृत है, सब पूरा हो जाए। ऐसा क्या तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के अवतार, और ऐसा मैंने कभी पढ़ा नहीं है और ना ही मैंने इसका कभी खंडन सुना है, तो ये रिसर्च का विषय है, चेक इसको करना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कभी पढ़ा नहीं है, है ना। सो हो सकता है वो भी, हो सकता है नहीं भी, कुछ कहा नहीं जा सकता। और किसी का प्रश्न है तो चलिए। आप सबका बहुत धन्यवाद। अभी विजय प्रभु, वामन रूपा प्रभु आपको दामोदर अष्टकम प्रेयर देंगे, और हमारे बीच एक विशेष भक्त हैं, और उनका वो पूरी फैमिली भक्तों की है। हाँ, उनके हमारे राकेश प्रभु हैं, सो उनके पेरेंट्स भक्त हैं, उनकी वाइफ भक्त हैं, बच्चे भक्त हैं, उनके जो ससुराल वाले हैं वो भक्त हैं, माता पिता भक्त हैं, उनके हमारे अभिषेक प्रभु हैं वो भक्त हैं, उनकी वाइफ भक्त है, मतलब सारा डिवोटी की फैमिली है सारी। सो ऐसा नहीं कि वो, और बहुत ही विलक्षण बात है ये, ऐसे हमारे वामन रूपा प्रभु हैं पूरी फैमिली भक्तों की है, समय सिंह प्रभु हैं पूरी फैमिली भक्तों की है, पावन जनार्दन प्रभु हैं पूरी फैमिली भक्तों की है, विनोद है, विनोद कहाँ है, विनोद है पूरी फैमिली भक्तों की है, और हमारे मनोज प्रभु भी लगे हुए हैं भक्त बनाने में फैमिली। सो आप पूरे फैमिली को डिवोटीज बनाओ, आपकी पूरी फैमिली अगर भक्त बनेगी तो आपको भक्ति करना और ज़्यादा आसान लगेगा आपको, है ना। तो हमारे विशेष भक्त हैं विशेष प्रभु, सो मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो दामोदर अष्टकम गाएं और बाद में हरे कृष्ण कीर्तन करें वो। तो अरे क्या आप बच्चे खिला रहे हो आप। सो जब हम दामोदर अष्टकम गाएंगे तो आप सब बैठे रहिए, और बैठ के हम सब मिलकर दामोदर अष्टकम गाएंगे। अगर आप ठीक से नहीं भी बोल पाए प्रॉब्लम नहीं है, हाँ आपका भाव, आपकी श्रद्धा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संस्कृत की ये प्रेयर है, ऐसा मत सोचिए कि कैसे बोलेंगे, आप जैसे टूटा फूटा जैसे भी आप बोल पाए अच्छा है भाई। सो हम दामोदर अष्टकम हम गाएंगे। सो पहले विशेष प्रभु गाएंगे, हम सुनेंगे, फिर हम बोलेंगे, विशेष प्रभु सुनेंगे, और दामोदर अष्टकम जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम हरे कृष्णा कीर्तन करेंगे। उस समय आप एक एक करके जा सकते हैं, और वहाँ पीछे देखो कूलर लगा हुआ है, वहाँ पर दिए रखे हैं, तो सतपाल प्रभु सबको दिए जलाकर दे देंगे। तो आप सब भगवान की आरती कीजिए। तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, लक्ष्मी नारायण, आप इनको दीप दिखाइए। उसके बाद बाहर एक वेदी बनी है, वहाँ पर तुलसी महारानी विराजमान है, तो आप वही दीपक लेके जाइए और तुलसी महारानी को दीपदान कीजिए, और वहीं पर दीपक रख दीजिए, बुझाइए मत, अच्छे से वहीं पर दीपक सजाकर रख दीजिए। किसी को कोई शंका तो नहीं है इसमें। पहले हम सब मिलकर दामोदर अष्टकम गाएंगे, उसके बाद आप सब हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए दीप दान करेंगे। दीप दान करने के बाद आप पहले यहाँ पर दीप दान करें, फिर वही दीप बाहर ले जाकर, तुलसी महारानी है बाहर विराजमान है, तुलसी महारानी को दीप दान करें, और वहीं पर सजाकर, ऐसे नहीं टेढ़ा मेढ़ा रख दिया, सजाकर दीपक वहीं पर रख दीजिए, उसको जलते रहने दीजिए, ठीक है। सबको समझ में आ गई। चलो